ओमज्ञानातिमिरम्भस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं राधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी दृशमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज एकादशी के इस पावन अवसर पर। और जैसा कि इस गांव में परंपरा है, हम लोग एकादशी पर प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत से ही पाठ क्यों करते हैं बताइए? क्यों चुना गया प्रभुपाद लीलामृत को पाठ करने के लिए एकादशी के दिन खास करके? एकादशी तो बहुत बहुत शुभ अवसर है और भगवान की प्रिय तिथि है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, शुद्ध भक्तों का गुणगान करने के लिए, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो शायद हम सभी यहां नहीं बैठे होते। ये एक कृतज्ञता ज्ञापन है प्रभुपाद के प्रति, जो कि हर इस्कॉन सेंटर में जो है इसको किया जाता है कि एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए प्रभुपाद को। तो उसी संदर्भ में और ये भी समझने के लिए कि प्रभुपाद ने किस तरह से इस आंदोलन को स्थापित किया, कितनी मुश्किलें आई उसमें, तो ये अभी जो प्रसंग चल रहा है ये अमेरिका का है, इसी महीने का है, जुलाई का 1975 ईस्वी का, अर्थात आज से 40 साल पहले की घटना को इसमें बताया गया है। ये तब की घटना है जब प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला था कि 17 बुकों को 2 महीने में प्रकाशित करना है, ऑलमोस्ट असंभव काम है। किसी एक बुक को छापने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए होता है एक बुक को छापने के लिए, और 17 बुक को छापना था कितने समय में? 2 महीने। जब राधा वल्लभ प्रभु और उपेंद्र ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा उनको विश्वास नहीं है कि प्रभुपाद ने कुछ गलत बोला होगा, उन्होंने दोबारा प्रभुपाद से पूछा कि आपने क्या बोला है। प्रभुपाद ने सेम चीज दोहराई, मैं चाहता हूं 2 महीने में तुम जो है वो 17 बुक छाप दो। तो उछल पड़े राधा वल्लभ, करें इम्पॉसिबल। उनका संसार में अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो 17 बुक को 2 महीने में छाप देगी। उस समय का जो बेस्ट पब्लिशर थे जो न्यूयॉर्क में और टोक्यो में, उससे भी बात करके उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है प्रभुपाद, 17 बुक कोई 2 महीने में छाप देगा। तो प्रभुपाद ने कहा लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग छाप दो 2 महीने में 17 बुक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब अनमने ढंग से उन्होंने ठीक है एक्सेप्ट किया कि आप बकवास नहीं करना चाहिए, गुरु से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। फिर भी राधा वल्लभ ने कहा प्रभुपाद कम से कम हम 4-5 बुक तो निकाल पाएंगे 2 महीने में, अगर आप जैसे करें उस हिसाब से। कह रहे 4-5 बुक नहीं, प्रभुपाद कह रहे 17 बुक्स इन 2 मंथ्स इन 60 डेज। वो एक जो ये पुस्तक छापने के इंचार्ज थे राधा वल्लभ प्रभु और उपेंद्र, ये दोनों तीर मिला गए। ये कैसे बातें कर रहे हैं 17 बुक 2 महीने में। कहा ठीक है प्रभुपाद आप जैसे करें हम करने का। कह रहे कि मैं जैसे कर तुम करो खाली। और वही हुआ, वो वही समय है और वही उसमें, तो ये लॉस एंजलिस की घटना है। और प्रभुपाद ने जैसे आदेश दिया था उस पर भक्तों ने काम करना शुरू किया। और जितने भी इस्कॉन के उस समय इस्कॉन को स्थापित हुए हुए तकरीबन 9 साल हो चुके थे, जितने भी इस्कॉन के जहां पर भी डिवोटी थे खास करके USA में, और जो बड़े बड़े लीडर थे धुरंधर लोग, उन सबको बुला लिया गया। और जितने भी डिपार्टमेंट के जो भी लोग थे सबको वहां बुलाया गया और सबकी शिफ्ट लगाई गई। 24 घंटे अब उस प्रेस में काम हो रहा था, 24 घंटे न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे जो पब्लिशर थे उस समय के, आप खुद समझे उस समय के न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे पब्लिशर था, उसको एंगेज किया गया। अमेरिका के एक कंपनी से बात करी गई तो उसने कहा मैं चीप रेट में कागज सप्लाई कर दूंगा जितना चाहिए आपको, वो मान गया। जो पब्लिशर कंपनी थी वो इस बात के लिए मान गया कि हम अपनी दूसरी बुक्स को छापना भी बंद कर देंगे, आपकी बुक छापेंगे। और इस तरह से जिसके जिसके पास भी जा रहे थे वो काम बनता जा रहा था। और उसके बाद फिर ये शुरू हुआ। बट सबसे इम्पोर्टेंट था प्रूफ रीडिंग करना, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए 24 घंटे की शिफ्ट चाहिए होता था। 24 घंटे जो है वो उस प्रेस में काम होता रहता था, 24 घंटे एक मिनट के लिए बंद नहीं होता था। बल्कि कई बार ऐसा हुआ, एक बार राधा वल्लभ प्रभु प्रभुपाद से मिलने के लिए आ गए। प्रभुपाद उस समय उसी वहीं पर थे तो प्रभुपाद ऐसे आंखें बंद करके अपना भजन सुन रहे थे, अपने ही भजन को खुद सुन रहे थे। तो कुछ और डिवोटी भी वहां साथ में बैठे थे तो राधा वल्लभ प्रभु को बड़ा अच्छा लगा, वो भी बैठ गए। तो प्रभुपाद थोड़ी देर के बाद आंखें खोलते हैं तो सामने राधा वल्लभ प्रभु दिखाई देते हैं जो कि वो इंचार्ज थे उस समय के। फिर प्रभुपाद ऐसे आंखें बंद कर लिया प्रभुपाद ने, फिर बोलते हैं ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें रोक रखा है यहां पर। अब सब किसी को समझ में नहीं आया प्रभुपाद ने किसके लिए बोला और फिर आंखें बंद कर ली। जो दूसरे डिवोटी थे वहां पर उन्होंने कहा भाई आपके लिए बोला होगा प्रभुपाद ने। राधा वल्लभ को भी स्ट्राइक किया कि हाँ मुझे नहीं बोला होगा, उठ के चले गए। मतलब एक मिनट के लिए कोई आता था मंगल आरती में, थोड़ी देर के लिए आते थे मंगल आरती किया और उसके बाद अपना जपा शुरू कर देते थे। जप करने के बाद उनके बाद जितना भी समय बचता था वो पूरा का पूरा समय जो है उसके लिए लगाते थे। ये उसी संदर्भ उसी समय उसी जगह की घटना है। और प्रभुपाद जो है वो न्यूयॉर्क में से लॉस एंजलिस और अमेरिका के बहुत सारे शहरों में वहाँ आसपास ही जा रहे थे, इस कभी दूसरे जगह पर कई यहाँ पर फिर वापस आ जाते थे लॉस एंजलिस के लिए। तो इस तरह से भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए प्रभुपाद भी वहाँ अक्सर रहते थे या आया जाया करते थे ताकि वो जो चीज़ें हैं वो पूरी हो सके। तो वही प्रसंग है जो, और इसका शीर्षक है अमेरिका में प्रचार, तो मैं वहीं से पढ़ूंगा। श्री प्रभुपाद ने अपनी संयुक्त राज्य की यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया। उन्हें लगुना बीच से सैन डिएगो और वहां से डलास पहुंचना था। उन्हें डलास से न्यूयॉर्क न्यू ओरलैंड ओरिलियंस और निकटस मिसिसिपी में इस्कॉन के फॉर्म देखना था। फिर वहां से डेट्रॉयट टोरंटो बोस्टन होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना था। न्यूयॉर्क से यूरोप की यात्रा करते हुए अंततः भारत आना था। अब देख कितना कितना प्रभुपाद का जो शेड्यूल कितना बिजी है। हमें एक शहर में वृंदावन जाना हो तब भी तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि दो ढाई घंटे का रास्ता है। तो कई बार सोचते हैं तो कई बार चार महीने में तीन महीने में छह महीने में कभी चले जाते हैं। और प्रभुपाद का शेड्यूल देखिए न्यूयॉर्क बोस्टन लंदन हम एक साथ बोल भी नहीं पाएंगे। इतने सारे शहरों में प्रभुपाद होते हुए और फिर भारत आना था। और इस तरह प्रभुपाद जो है वो अक्सर घूमते रहते थे। खुद ही बोलते थे जब तक मेरा शरीर मुझे अलाउ कर रहा है मैं जरूर जो है भ्रमण करूंगा। प्रभुपाद के दृष्टिकोण से कृष्णा भावनामृत के प्रसार के लिए उनकी यात्रा आवश्यक थी। किसके लिए प्रभुपाद यात्रा कर रहे थे? कृष्णा भावनामृत के प्रसार के लिए। प्रसार के लिए जैसा कि बर्कले पहुंचने पर उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा था, मैं साल में दो तीन बार विश्व भ्रमण करता हूं। मेरा धर्म है कि मैं देखूं कि जिन शिष्यों ने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है वे पतन के गर्त में ना गिरें, यही मेरी चिंता है। देखिए ये गुरु की चिंता होती है कि शिष्य ना गिरे। आज तो थोड़ा सिचुएशन बदल गया है, अब तो और नीचे और नीचे और नीचे चीजें फैल रही हैं। पर उस समय आप देखिए प्रभुपाद का क्या कंसर्न था कि मैंने जिसको दीक्षा दिया है वो नीचे ना गिर जाए, इसीलिए उनसे मिलना उनको समझाना और बीच में जो है उनको प्रोत्साहित करते रहना ये भी गुरु का काम है। तो एक काम जैसे उन्होंने सौंप दिया अपने शिष्यों को कि आप पुस्तक छापने का काम करो, तो उसके लिए रुके नहीं रहते थे, फिर चले गए आगे कि आगे और भी काम करना। और इस तरह जो है वो प्रभुपाद का जो दिनचर्या है उसी तरह का काम। प्रभुपाद की चिंता अपने शिष्यों के लिए थी किंतु वह चिंता सभी लोगों के लिए भी थी। मानव समाज की पतित और अज्ञानतापूर्ण दशा से विशेषकर पाश्चात्य जगत की दशा से दुखी होकर वे अंग्रेजी भाषा भाषी जन समाज की सहायता करना चाहते थे जैसा कि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था। दो वर्ष पूर्व कलकत्ता में उनकी मनोस्थिति यही थी जब वे बीमारी से उठे थे और लंदन की रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए वायुयान से वहां पहुंचे थे। उनकी प्रबल इच्छा पश्चिम में प्रचार करने की थी जहां लोग मायावादी दर्शन के गहरे प्रभाव में थे, ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे थे और इंद्रियों के भोग का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग आसानी से अज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ेंगे किंतु यदि वे एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना लेंगे तो उनका कार्य सफल हो जाएगा। अब देखिए प्रभुपाद भी ये जानते थे मैं जिनको प्रचार कर रहा हूं वो सारे भक्त नहीं बनेंगे। कई बार हम लोग गलतफहमी में हो जाते हैं कि मैं जिसको प्रचार कर रहा हूं उसको भक्त जरूर बनना चाहिए और कई बार हम उससे अटैच भी हो जाते हैं। मैंने इसको कितनी बार समझाया कितनी बार बताया, ये संभव नहीं है क्योंकि माया का जो आकर्षण है बहुत ज्यादा है। और ये वो समय है जब प्रभुपाद के काफी डिसाइपल जो है वो धीरे धीरे आंदोलन को छोड़ रहे थे, प्रभुपाद के सामने ही छोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय उनकी संख्या बहुत कम थी क्योंकि प्रभुपाद के जाने की बाद ये संख्या एकदम से बढ़ी। श्री श्री राधा राधिकारमन भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री कृष्ण बलराम जी की। तो ये वो समय था जब धीरे धीरे लोग जो है वो इस्कॉन सोसाइटी को छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बंध गए हैं। कई लोगों को लगता था कि गुलाम बन गए हैं, यहां से बाहर कुछ कर नहीं सकते। और इस तरह से ही होता है, माया जो है वो गुलामी दिखाकर हमें स्वतंत्रता दिखाकर गुलाम बनाती है और भक्ति गुलामी दिखा करके स्वतंत्र बनाती है। भक्ति में हमें लगता है कि हम गुलाम बन जाएंगे, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ करने नहीं देते, ये भी मत करो वो भी मत करो ऐसा भी मत करो ऐसा भी मत करो, हमें लगता है कि गुलाम बना रहे हैं। बट एक्चुअल में आपको ज्यादा स्वतंत्र कर रहा है व्यक्ति, हम हमेशा के स्वतंत्र हो जाएंगे। और माया तो स्वतंत्रता भी खा करके हमें गुलामी के ऐसे दलदल में फेंकती है कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे, चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे, ना कोई निकाल पाएगा। ये तो बहुत भगवान के और शुद्ध भक्तों की बहुत बड़ी कृपा हो जाए किसी के ऊपर तो व्यक्ति बाहर निकल सकता है, तो संभव नहीं है माया के चंगुल से निकलना। और चाहे वो को स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, कि आपने स्थान बदल लिया तो आप माया के चंगुल से मुक्त हो गए। कई बार हमें लगता है कि स्थान बदल लिया, कपड़े बदल लिए, हेयर स्टाइल बदल लिया, चोटी रखनी शुरू कर दी, तो अब माया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। माया का प्रभाव अब भी उतना ही है जितना पाप पहले था, कुछ भी कम नहीं हुआ, क्यों माया भी इतनी कमजोर नहीं है, वो भी भगवान की शक्ति है, तो वो बिल्कुल कमजोर नहीं है। तो हम कई बार इस गलतफहमी में भक्त जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। अब क्या समस्या है? समस्या यही है कि वो भक्तों के समाज में भी अटैक करती है, भगवान के साथ भी मंदिर में भी खड़ी रहती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान के साथ ही खड़ी होगी, यह अलग बात है कि भगवान के पीछे खड़ी होती है, और होती तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि केवल अपने जीवनचर्या बदलने से, लाइफस्टाइल बदलने से हम भक्त बन जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भक्त बदलने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति को अपना स्वभाव बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है स्वभाव बदलना, अपना ही स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं दूसरों को बदल दें, तो भक्ति में जो ये प्रचार होता है हम दूसरों को बदलने के लिए करते हैं, तो ये इस बात के लिए हमेशा जो है वो हठात नहीं होना चाहिए कि मैंने जिसको प्रचार किया वो भक्त जरूर बनेगा। हमने अपना कर्तव्य करना है, बाकी कृष्ण करेंगे, क्योंकि बदलेंगे तो किसी को कृष्ण ही, हम नहीं बदल पाएंगे क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं और वो उससे क्या है, भगवान फिर कृपा करेंगे हमारे प्रयास को देखकर भी, और उस भक्त जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसकी सिंसियरिटी को देखकर भी, तभी भगवान कृपा करते हैं और भक्ति को बदल देते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है किसी व्यक्ति का बदलना आज के समाज में खास करके। ये उस समय की बात है, देखिए आज से 40-50 साल पहले जब इस वातावरण बहुत अच्छा था, कम से कम अब के समय से, कि टेलीविजन का ऐसा प्रभाव नहीं था, इस तरह के मॉल्स नहीं थे, इस तरह की सड़कें नहीं थी, इस तरह की सब कुछ नहीं था, उस समय इतना मुश्किल था प्रचार करना, जबकि ऐसा बताया जा रहा है, तो अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया, और आने वाले समय में तो और भी खराब स्थिति होने वाली है। तो एक प्रीचर के लिए यह है कि उसको बहुत अधिक अटैच नहीं होना चाहिए अपने जो है कार्य क्षेत्र से, ठीक है उसका काम है करना, और उसके बाद जो है वो नहीं भी बनता है तभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपने उसके अंदर एटलीस्ट कृष्णा भक्ति का बीज बो दिया है, या उसको चाहे छोटे रूप में ही सही उसको आपने जागृत कर दिया, तो कभी ना कभी जो है वो मौका जब मिलेगा प्रस्फुटित हो जाएगा। यही जो है वो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को भी मैं शुद्ध भक्त बनाने में सफल रह गया, एक व्यक्ति को, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो है ये कार्य सफल हो गया। आप खुद सोचिए, प्रभुपाद के लेवल पे बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त है, क्या सोच रहे हैं कि मैं अगर एक व्यक्ति को भक्त बना पाया तो। प्रभुपाद की योजना अपनी महत्वपूर्ण भारतीय परियोजना पर कुछ महीने गहन कार्य करने की थी, और उसके बाद वे पश्चिम को लौटकर अपनी यात्राओं और प्रचार में लग जाएंगे। जरूरत दोनों की थी, भारत में परियोजनाओं को विकसित करने की और पश्चिम में यात्रा करने की। जब बर्कले में योगी भजन और उनके साथियों ने आश्चर्य प्रकट किया था कि प्रभुपाद विश्व यात्रा करके अपने शिष्यों को बनाए रखने में कैसे सफल हो रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यह बहुत कठिन कार्य था, और वे अपने GVC सचिवों को आंदोलन का नेतृत्व करने की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, किंतु अभी तक ऐसा लगता था कि जब तक उनमें यात्रा करने की शक्ति है तब तक वे यात्रा करना जारी रखेंगे। ये प्रभुपाद खुद ही, हालांकि उन्होंने पूरा जो है सिस्टम डिजाइन कर दिया था, GVC बना दिया था, प्रचार कार्य के क्षेत्र भी बांट दिए थे, फिर भी प्रभुपाद वो रुकते नहीं थे, हर जगह जो है वो खुद ही जाना चाहते थे, क्योंकि उनके लगता था भारत में कई परियोजनाएं चल रही थी उस समय, खास करके बॉम्बे का मंदिर और वृंदावन का मंदिर और मायापुर मंदिर, तीनों मंदिर बन रहा था ये उसी समय की बात, तीनों मंदिर एक साथ बन रहे थे, और भी कुछ बन रहे होंगे पता नहीं, बट ये तीनों तो बन ही रहे थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि यहाँ जो है मेरा समय यहाँ भी लगना चाहिए, ताकि वो चाहते थे कि वो उन्हीं के अनुरूप बने जैसा वो चाहते थे उन्हीं के अनुरूप बनाना चाहते थे। खास करके इवन बॉम्बे मंदिर को उद्घाटन करने के लिए प्रभुपाद बहुत लालायित थे कि मैं बॉम्बे मंदिर का डीटी इंस्टॉलेशन करूं और अपने हाथों से और उद्घाटन करके फिर शरीर छोड़ूं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि प्रभुपाद जो है वो नवंबर में जो है वो इस धराधाम को छोड़ चुके थे और जो जनवरी में बॉम्बे मंदिर का उद्घाटन हुआ जनवरी 1978 में, वो दो तीन महीने का अंतर रह गया था खाली, ऑलमोस्ट काम काफ़ी सारा हो गया था। पर प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि वो बॉम्बे मंदिर का उद्घाटन कर, लेकिन वृंदावन और मायापुर में तो उन्होंने कर ही दिया था। वृंदावन मंदिर को ओपनिंग कर दी और कुछ ही महीने के बाद वृंदावन मंदिर का उद्घाटन होता है इसी 1975 में, और मायापुर में भी उन्होंने एक मंदिर का और एक बिल्डिंग का को निर्माण कर पूरा करवा चुके थे। तो उन्हें लगता था कि ये सब प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, साथ में वो इतना ही इम्पोर्टेंट काम मानते थे अपने भ्रमण करने को कि मैं जगह जगह जाकर देखूं कि वहाँ जो लोग हैं वहाँ कृष्णा कॉन्शियस का वो कैसे प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट था और भगवान से प्रार्थना भी करते थे कि वो जो सेंटर है वो फले फूले। ऑस्ट्रेलिया में कहता था कि जब सेंटर स्थापित कर रहे थे प्रभुपाद तो वहाँ पर कोई भक्त भी नहीं था सेवा करने के लिए, तो प्रभुपाद जो है किसी को ठीक से आता भी नहीं था। प्रभुपाद ने दो तीन लोगों को थोड़ा बताया था कि कैसे कैसे करना है कैसे कैसे करना है, और फिर प्रभुपाद को दो दिन के बाद ही जाना था। तो प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं आपको मलेच्छों के सहारे छोड़े जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करी आप इनसे सेवा एक्सेप्ट कर लें और इनको बुद्धि भी देना कि आपकी सेवा कर सके। तो क्योंकि मैं रुक नहीं सकता और इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे कैसे प्रभुपाद ने प्रचार किया, लोगों पर पूरा ड्यूटी वर्शिप छोड़ दी, पूरा सेंटर चलाओ तुम और फिर निकल जाते थे। तो उन्हें लगता था कि मेरा बाकी जगह भी जाना बहुत आवश्यक है। अब कितना इम्पोर्टेंट था आप खुद सोचिए, 11 साल में तो व्यक्ति अपना एक घर नहीं बना पाता शहर में, एक फ्लैट नहीं खरीद पाएगा दिल्ली जैसे शहर में खरीद करके, और 11 साल में 108 मंदिर स्थापित कर दिए, वो भी न्यूयॉर्क लंदन लॉस एंजलिस डलास लगुना बीच कनाडा पता नहीं कहाँ कहाँ, हम सोच ही नहीं सकते। तो इसी से आप समझ लीजिए कि व्यक्ति में कितना पावर होगा। तो ऐसे समय में जबकि जो उस समय जो इस वर्ल्ड की स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, पूरा वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड था, बल्कि तीन भागों में, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, मतलब अलग अलग तरह के, एक रशिया समर्थित देश थे, अमेरिका समर्थित देश थे और एक था गुटनिरपेक्ष देश, तीन अलग अलग गुटों में बंधे हुए थे देश, बड़ा आपस में लोगों की अच्छी वो नहीं थी। वियतनाम और अमेरिका का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था 12-13 साल से, पूरे वर्ल्ड में बड़ी अजीब सी स्थिति थी और उस समय प्रभुपाद ने यह सब कर देखा है। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में उनको एक ही लगा था कि चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना और उसके लिए वो काम करते रहे। ये लगुना बीच की जो है ये अभी अभी आगे पढ़ेंगे, जो लगुना बीच में 25 जुलाई 1975, आज 27 जुलाई है, 25 जुलाई 1975, 40 साल पहले की बात है, लगुना बीच लॉस एंजलिस के दक्षिण में 2 घंटे की कार द्वारा यात्रा की दूरी पर स्थित था। बीच के निकट घर को बदलकर बनाया गया मंदिर आए हुए भक्तों और अतिथियों से भरा था। प्रभुपाद के गद्दीदार आसन पर बैठने के बाद मंदिर के कुछ नेता एक एक करके आगे आए और उनका पग प्रक्षालन करने लगे। जब प्रभुपाद जो है वो लॉस एंजलिस से लगुना बीच गए, लगुना बीच में कौन से डीटी हैं बताइए, पंचतत्व की डीटी हैं, बहुत सुंदर पंचतत्व हैं लगुना बीच में, मेरे ख्याल में सबसे पहले लगुना बीच में ही पंचतत्व स्थापित हुए थे, तो पंचतत्व का मंदिर है वहां पर। तो प्रभुपाद वहां पर थे और फिर एक एक करके भक्त आए, प्रभुपाद का जो है पैर प्रक्षालन करने लगे। पर लगुना बीच जो है वो मादक द्रव्यों के लिए जाना जाता था, लगुना बीच का इसी के नाम बहुत ज्यादा था पहले कि वहां सारे जितने भी लोग थे वो बहुत नशेबाज थे, मतलब हर व्यक्ति नशा करता था, वहां पर नशेरियों का शहर था वो, और उस नशेरियों के शहर में जो है वो बीच के बिल्कुल पास में, बिल्कुल बीच के किनारे में एक बहुत बड़ी कोठी खड़ी करके मंदिर बनाया गया था, और वहां पर तई प्रभुपाद ने पंच तत्व को स्थापित किया था, यही इनका उद्धार करेंगे। तो वो वही इसी उसमें आगे बोलते प्रभुपाद अपने इसमें एक प्रवचन दिया प्रभुपाद ने, जिसमें उन्होंने पूछा, प्रभुपाद मादक द्रव्य सेवन के विरुद्ध बोले, क्या यहां कोई है जो यह कह सके कि मैं नियंत्रक हूं? क्या यहां कोई है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? आप सोच सकते हैं कि आप नियंत्रक हैं, किंतु आप मादक द्रव्यों से नियंत्रित हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंट्रोल करता हूं, ये नशा ने आपको कंट्रोल कर रखा है, हम नशे के से कंट्रोल हैं। लगुना बीच नगर अवैध मादक द्रव्य केंद्र के रूप में कुख्यात था, विख्यात नहीं था, क्या था? कुख्यात था। कुख्यात का मतलब होता है बुरी तरह से बदनाम होना, किसी बुरी चीज के लिए बदनाम हो जाना। तो कुख्यात था, किस चीज के लिए? मादक द्रव्यों के लिए। प्रभुपाद यहां भावुक आध्यात्मिकता की बात कहकर किसी की खुशामद करने नहीं आए थे, वरन उनके भ्रम के चीर फेंकने के लिए आए थे, अर्थात उनका भ्रम उतारने आए थे कि तुम मादक द्रव्यों ने तुम्हें कंट्रोल कर रखा है, तुमने मादक द्रव्य को कंट्रोल नहीं किया हुआ। गुरु महाराज का पद प्रक्षालन अच्छा था, देखिए प्रभुपाद बहुत बड़ी फिलोसफी बता रहे हैं यहां पर, गुरु महाराज का पद प्रक्षालन अच्छा था, लेकिन सच्चा भक्त बनने के लिए विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना ज्यादा जरूरी है। कई बार हम समझते हैं कि प्रभुपाद को फूल अर्पित कर दिया और आगे पीछे बरस बड़ी सारी चीजें होती हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हम छोटी छोटी चीजों को जो कि कैटर धर्म है उसके लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, जो मेन जो है चीज है उससे कई बार जो है इतना फोकस्ड नहीं रहते। पर यहां क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, खुद ही कह रहे हैं कि बात प्रक्षालन तो ठीक है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति के नियमों का पालन करना, कि हम दृढ़ता से भक्ति के नियमों का अगर पालन करते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गुरु को ज्यादा प्रसन्न करती है, रेदर देन कि हम गुरु के लिए कुछ उपहार लेके जाएं और फूल दे दें और माला पहना दें, गुरु आए तो साथ साथ में खड़े हो जाएं, फोटो खिंचाएं, आगे पीछे घूमते रहें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखते हो ये सब चीजें बहुत होती हैं, जो आप व्यक्ति आपको कभी दिखता नहीं है वो साथ साथ में महाराज से खड़े हो जाएगा, कई भी आप देखो कई बार होता है, कई महाराज लोग आते हैं एकदम साथ में खड़े हो जाएंगे, आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, बगल में चलेंगे, क्योंकि जब फोटो खींची जाएगी तो उनका साथ में आएगा, तो ये साबित हो जाएगा कि मैं बड़ा भक्त हूं, तो गुरु महाराज के साथ साथ चल रहा था। मैंने हिजोलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से ये प्रश्न किया था एक बार वृंदावन में, जब महाराज एक बार प्राइवेटली बुला रहा था किसी भक्तों को, मैं भी गया था, मैंने पूछा महाराज मैं काफी सारे डिवोटी आपके आसपास होते हैं, मैंने बोले पूछना ही चाहिए, मुझे लग रहा था ऐसे, और कई बार वो मंदिर में दिखाई नहीं देते, कई बार वो व्यक्ति का कई बार आचरण ठीक नहीं होता, और जब आप आते हो तो आपके साथ साथ खड़े हो जाते हैं, आपके आगे आगे खड़े होते हैं, आप उनसे ज्यादा समय भी देते हो, कई बार बात भी करते हो, तो हमें हम लोगों को क्या समझना चाहिए? या कई बार आपने उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है भाई ऐसे करो, हमारे जैसे डिवोटी को आपने कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया। महाराज ने बड़ा गंभीर उत्तर दिया था, महाराज ने कहा था कि ये समझना कि कोई मेरे साथ खड़ा है बहुत बड़ा भक्त है, कि वो व्यक्ति भी बहुत बड़े गलतफहमी में है, जो ये सोचता है वो भी बहुत बड़े गलतफहमी में है, कि वह हम कई बार महाराज ने फिर काफी लंबा उत्तर दिया था, फिर महाराज ने कहा था कई बार हम इसलिए उन भक्तों की तरफ से ज्यादा बात कर लेते हैं या ज्यादा चीजें समझा देते हैं क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है, तो छोड़ने वाला है, तो व्यक्ति जब ज्यादा बीमार हो तो उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, कि इस बीमार व्यक्ति को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, नहीं तो ये भी तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए। और फिर पर्सनल इंस्ट्रक्शन के बारे में महाराज ने कहा था कि मैं जब भी आप भक्ति के नियमों का जब आप दृढ़ता से पालन करते हो वही मेरा पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, जब मैं कोई लेक्चर देता हूं उसमें जो अपने शिष्यों से मैं उम्मीद करता हूं जो बताता हूं वो आपके लिए भी है और वो भी आपके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन ही है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं मिला और दूसरों को मिला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है ऐसा भी नहीं है कि मैं किसको किसको मेरे से ज्यादा बात करता है, मेरे पास ज्यादा मिलने आता है, मेरे साथ ज्यादा खड़ा होता है, मैं उसे कोई अलग मंत्र देता हूं। महाराज ने कहा उसके लिए भी वही सब कुछ है जो आपके लिए है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए किसी भी डिसाइपल को, किसी भी भक्त को, कि इस तरह से जो है, क्योंकि ये एक स्वभाव है भक्ति का। वो अपना वो स्वभाव को लेकर के कृष्णा कॉन्शियस में आया है, तो उस स्वभाव को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाता है। तो आप समझ लो, कई लोगों को आप देखोगे कि वो पीछे खड़े रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, कई लोग बहुत सहज चरण की बोटी हैं, अपना आराम से खड़े रहेंगे, महाराज भी आएंगे क्योंकि आप उनको अपनी सेवा है उसमें लगे रहते हैं। कई लोग सेवा छोड़ के आगे आगे खड़े होते हैं, तो क्योंकि एक व्यक्ति इन्फीरियर फील करता है, उसको लगता है कि गुरु महाराज आए हैं, मैं अपनी सेवा छोड़ के जाऊं, गुरु महाराज बुला लेंगे, पूछ लेंगे। आप समझ रहे हो, अपने गुरु के सामने में इन्फीरियर फील करता है। वन फील हेजिटेंट बिकॉज ही फील्स इन्फीरियर, बट द अदर इज बिजी मेकिंग मिस्टेक्स एंड बिकमिंग सुपीरियर। और दूसरा व्यक्ति जो है वो गलती करता रहता है और सुपीरियर बनने का प्रयास भी करता है, क्योंकि साथ में खड़े होता है। क्योंकि हम जो पहचान करते हैं व्यक्ति की, बाहिक चीजों से ज्यादा करते हैं, कपड़ों से, उसके हाव भाव से, उसके आसपास रहने से, प्रेसिडेंट के साथ कितना घूमता है, महाराज के साथ कितना घूमता है, फोटो में बाहर उस पर डैश उस बोर्ड के ऊपर जो है उसी का फोटो लगा हुआ दिखा महाराज के साथ, तो हमें लगता है बहुत अच्छा। तो हमें इस रूप में उसको नहीं जानना चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है, क्योंकि अपने जीवन में उसने यही सीखा है कि बड़े लोगों के साथ खड़े होना है, बड़ा बनना है, तो यही समझ में आता है कि महाराज आए तब उसके सामने खड़े हो जाओ, बाकी नहीं भी आएंगे तो चलेगा। तो ये उसकी मनोवृत्ति है, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी भक्त को। कई बार भक्त लोग परेशान होते हैं, वो भक्त कैसे करते हैं, वो कैसे नियम तोड़ता है, उससे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने धर्म का पालन करो, हमें ये नहीं देखना है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि फिर हम इस सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं कि वो उसको ज्यादा महत्व मिल रहा है और हमें कम मिल रहा है, तो हमारे अभी फॉल डाउन निश्चित है। क्योंकि हमें ये भी नहीं देखना, हमें चुपचाप अपनी भक्ति करनी है। और प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि ये प्यार प्रक्षालन ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी क्या है, भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना। और प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनना होगा, प्रभुपाद ने कहा था उस समय उसमें अपने, कि वो मादक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होना चाहता है या कृष्ण के द्वारा, उसको खुद ही चुनना होगा। तो हमें भी ये चुनना पड़ेगा कि हम माया के उस जाल में आवेश होना चाहते हैं कि हम आगे दिखना है, या कृष्ण के द्वारा नियंत्रित रखना चाहते हैं कि शांति से सेवा करो, जब जरूरत होगा महाराज से बात भी कर लेंगे, बुला भी लेंगे और प्रश्न भी पूछ लेंगे। ये ज्यादा आवश्यक है। प्रभुपाद मंदिर के निकट एक पड़ोसी के घर में ठहरे थे, उनके मिलने वालों में सर्वप्रथम ऋषिदास था। ये प्रभुपाद का एक डिसाइपल था, जो सन्यासी डिसाइपल था और जिसने सन्यास आश्रम को छोड़ दिया, अब बिल्कुल एक सिंपल व्यक्ति बनके दोबारा प्रभुपाद से एक दिन अचानक मिलने आ गया था वहां पर, जो अपनी दीक्षा का परित्याग कर चुका था और कृष्णा भावना मेरे से दूर हट गया था। सिर पर लंबे घुंघराले बाल और दाढ़ी रखे ऋषिदास संयोग से उधर आ गया था, ताकि अपने भूतपूर्व आध्यात्मिक गुरु से, आप समझो दीक्षा का त्याग कर दिया, भूतपूर्व आध्यात्मिक गुरु से थोड़ी देर के लिए मिल ले। प्रभुपाद ने उत्साहपूर्वक ऋषिदास का स्वागत किया। अब देखिए ये प्रभुपाद का व्यवहार देख लीजिएगा, अगर हमारे साथ ऐसा हो, हमारी कोई बात नहीं मानता, आपकी क्लास में कोई आ रहा हो, कोई आप जिसको प्रीच करते हो, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप हमें कहेंगे या हम भी घूम जाएंगे इधर। प्रभुपाद ये दीक्षा छोड़ दिया, इसने संन्यास आश्रम छोड़ दिया, प्रभुपाद की शरण छोड़ दी व्यक्ति ने, और फिर भी जब आया था प्रभुपाद ने कैसे स्वागत किया, बहुत उत्साहपूर्वक। ये सीखना चाहिए प्रभुपाद, कोई डिफरेंस नहीं कि व्यक्ति चला भी गया, छोड़ भी गया, तब भी जब व्यक्ति दोबारा आता है प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो प्रभुपाद बड़े उत्साह से उसका स्वागत करते हैं। दोनों में मुस्कान का विनिमय हुआ, किंतु ऋषि का व्यवहार निर्लज या लगभग अवज्ञापूर्ण था। उसको इस बात का अफसोस नहीं था उसने दीक्षा छोड़ दी या संन्यास आश्रम छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हो, और उसके पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं प्रकट होने दिया। अब समझो, उसने ऐसा कोई सिम्टम भी नहीं दिख रहा था कि ये व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप है कि इसने इस प्रभुपाद को छोड़ दिया या संन्यास आश्रम छोड़ दिया। शास्त्रों में इस ऐसे व्यक्ति को क्या बताया जाता है मालूम है आपको? शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को क्या बताया जाता है, बंतासी। बंतासी का मतलब वो है ऐसा व्यक्ति जो उल्टी करता है अपना, उसी उल्टी को दोबारा खा लेता है, है? अपने उल्टी को खा लेता है, तो ऐसे इसको बोलते बंतासी। तो ये कोई संन्यास धर्म छोड़ के दोबारा से फिर उस आश्रम में चला गया, ऐसे वो लोगों को शास्त्रों द्वारा कठोर शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये करेक्ट, और इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ उसको कोई शर्म आ रही थी या कुछ प्रॉब्लम। प्रभुपाद को इस लड़के की, जिसे उन्होंने कुछ वर्ष पहले संन्यास की दीक्षा दी थी, यह दशा देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। पहले स्वागत तो किया प्रभुपाद ने, लेकिन प्रसन्न नहीं थे कि इस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया। पूर्व के वर्षों में जब प्रभुपाद का कोई प्रिय शिष्य उन्हें छोड़कर चला जाता था, उन्हें रोना आता था। किसको रोना आता था? प्रभुपाद को। एक व्यक्ति ने और कृष्ण की शरण छोड़ दी। उन दिनों किसी शिष्य का पतन बहुत विरल था, लगभग नहीं के बराबर था। किंतु उस सालों से प्रभुपाद को ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं देखनी पड़ी। अभी अभी रिसेंट ईयर्स में जो प्रभुपाद ने जब दीक्षा दिया था 60s के लास्ट में, 68, 69, 70, तो उस समय ये नहीं था, बट ये पिछले 2-3 सालों से अर्थात 73-74 ईस्वी से जो है ये संख्या बढ़ने लगी थी। लोगों को छोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। उनके जीवीसी नेताओं और सन्यासियों के बीच भी ऐसी घटनाएं हो रही थी। 1967 ईस्वी में उनकी शिष्याओं में से एक पहली प्रभुपाद की शिष्या थी, मतलब शिष्य बहुत थे जिसको पहली शिष्या बनाया, उसका पहले क्या नाम रखा था? कृष्ण देवी दासी। ये पहली प्रभुपाद की मतलब जो है शिष्या थी। और इस शिष्या ने क्या किया सुनिए। कृष्ण देवी दासी अपने पति सुवर को छोड़कर एक अन्य लड़के के साथ भाग गई। हालांकि जिस देश में घटना हो रही थी वहां के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई पूछता भी नहीं था इस बात को, बहुत कॉमन है ये। तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया, उसके साथ चली गई, या उसको भी छोड़ दिया, उसके साथ चली गई। बहुत कॉमन है वहां पर, जैसे हम कपड़े बदलते हैं मान लीजिए 6 महीने साल भर में, तो वहां पर ऐसे होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलते हैं लोग 6 महीने साल भर में, तो वहां के लिए कोई मुश्किल नहीं था। पर प्रभुपाद को बड़ा धक्का लगा था इससे, उनकी पहली शिष्या थी ये कृष्ण देवी दासी। तो प्रभुपाद ने जो सुबल उनका शिष्य था उसको क्या बोला, सुबल ने प्रभुपाद ने सुबल को यह कहकर ढाढ़स दिया था कि कृष्ण का भक्त बनना बहुत ही विरल है, अर्थात बहुत दुर्लभ है कि कोई कृष्ण का भक्त बन जाए। प्रभुपाद ने कहा था, आगे कहा, आश्चर्य की यह बात नहीं है कि कृष्ण देवी दासी छोड़कर चली गई है, वरना यह है कि हम कृष्णा भाव बात इतने कैसे अधिक बने रह सकते हैं। आप समझिए क्या मतलब बताया प्रभुपाद, प्रभुपाद ने क्या बताया, यह आश्चर्य नहीं है कि कोई कृष्णा भाव मानव को छोड़ के चला जाता है, कोई आश्चर्य नहीं है, पर यह बड़ा आश्चर्य है कि कोई कृष्णा भावनामृत में टिका रहता है। माया का इतना प्रभाव है माया का, क्यों? क्योंकि हम बाहर जैसे ही निकलते हैं, हम सारी हमारी यहां जो हमने सुना है, देखा है, दर्शन किए हैं, वो सारी चीजें एक्सप्रेशन सब बदल जाएगा। जस्ट मंदिर के बाहर जाते हैं सब अलग चीजें नजर आती हैं। तो माया का ऐसा प्रभाव है, ये बार प्रभुपाद कह रहे हैं, इसको समझा रहे हैं अपने डिसाइपल को जिसकी पकड़ी भाग गई थी, कि ये बड़ी बात नहीं है कि वो छोड़ के चली गई, ये बड़ी बात है कि कृष्णा भावनामृत में कोई अधिक बन करके रह जाए, अच्छा टिक कर रह जाए कोई, ये ज्यादा बड़ी बात है। यद्यपि भक्त लोग कृष्णा भावनामृत को विभिन्न कारणों से छोड़ते थे, सबके छोड़ने का अलग अलग कारण होते थे, लेकिन प्रभुपाद सबके कारण को क्या मानते थे, एक ही कारण है, क्या? माया ने स्वीकार कर दिया। मानो कोई फाइनेंशियल कारण से छोड़ना चाह रहा है, किसी का कुछ और कारण है, किसी का और कुछ कारण है, पर प्रभुपाद को क्या लगता था, एकमात्र कारण क्या है, माया जो है अपना स्वीकार कर रही है। किंतु श्री प्रभुपाद को यही दिखाई देता कि वे माया के द्वारा ठगे गए हैं। परिणाम लगभग हमेशा वही होता, चाहे किसी ने नए धर्म के बहाने से छोड़ा हो, नए आर्थिक लाभ के लिए छोड़ा हो या अन्य किसी कारण से छोड़ा हो। आमतौर से वह आत्म साक्षात्कार के कड़े मार्ग को छोड़कर इंद्रियों की तृप्ति का जीवन अपना लेता था या अपना लेती थी। ऋषि के बारे में निश्चित रूप से यही सच था। जब प्रभुपाद ने उससे पूछा कि वह अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है, अब वही ऋषिदास जो आया था जिसने संन्यास दीक्षा लेकर के छोड़ दिया था, अब प्रभुपाद उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उसने क्या आंसर दिया सुनिए। तो वह हंसा और जोर से बोला, मैं सैक्सोफोन बजा रहा हूं। पता नहीं क्या होता है सैक्सोफोन, कोई बात भी यंत्र होता होगा कुछ। मैं सैक्सोफोन बजा रहा हूं, अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि वह 16 मारा जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब प्रभुपाद ने पूछा ही नहीं जब उसने कहा कि मैं सैक्सोफोन बजा रहा हूं, अथवा चारों नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। किंतु ऋषि प्रभुपाद को आश्वस्त करना चाहता था कि मैं अब ज्यादा बढ़िया हूं। अब समझ गए, वो प्रभुपाद को यह समझाना चाह रहा था कि मैं अब ज्यादा ठीक हूं, जब आपके पास आता तब इतना ठीक नहीं था, मैं अब ज्यादा ठीक हूं, मैं अब ज्यादा स्वतंत्र हूं। ये प्रभुपाद को कन्विंस करना था। मैं समझता हूं प्रभुपाद कि मैं अब अधिक स्वतंत्र हूं, उसने बोला। प्रभुपाद ने चुनौती दी, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें स्वतंत्रता है? ऋषि ने उत्तर दिया, हां कुछ है तो अध्ययन, अपना अध्ययन करने की, कार्य करने की। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारी क्या उम्र है? उसने उत्तर दिया, 29 साल। प्रभुपाद ने आग्रहपूर्वक पूछा, क्या तुम्हें इस बात की स्वतंत्रता है कि तुम्हारी उम्र ना बढ़े? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी है? ऋषि हंसने लगा, बोला, मुझे इसकी चिंता नहीं है। आप ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप किससे पूछो कि प्रॉब्लम है, आप नरक में जाओगे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है नरक है कि नहीं, गटक किसने देखा मरने के बाद? बड़ा टट्टा सा डायलॉग होता है, किसने देखा? उसने भी यही दिया, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि उम्र बढ़ रही है या घट रही है। प्रभुपाद ने तो कहा, हां ये ठीक है, परंतु मैं शोध कर रहा हूं कि मैं 78 वर्ष का हूं, मैं मरना नहीं चाहता, किंतु मुझे मरना ही होगा, तुम्हें भी वृद्ध तो होना ही होगा और मृत्यु तो आएगी। कोई वृद्ध नहीं होना चाहता न कोई मरना चाहता है, परंतु ये दोनों ही अवस्थाएं व्यक्ति को के सामने प्रकट होती हैं। अब देखिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि तुम ये ठीक है, अभी तुम ये सब चीजें कर रहे हो, छोड़ दिया, पर तुम्हें इन दो चीजों से तो नहीं बच पाओगे कि थोड़े समय के बाद बुढ़ापा भी आएगा और फिर मृत्यु भी होगी। प्रभुपाद अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि मैं 78 साल का हूं, मैं भी मरना नहीं चाहता, परंतु मुझे भी मरना पड़ेगा। जब किसी बात को बहुत जोर देना होता है, बहुत जोर देना होता है, तब व्यक्ति अपना एग्जाम्पल देता है। मालूम है आपको, किसी को अगर बहुत जोर देकर कोई बात बतानी हो, बहुत स्ट्रेस करना हो उस बात पर, तब कोई अपना एग्जाम्पल देता है। भागवतम में ये पैटर्न बहुत ज्यादा है। नारद जी व्यास देव को अपना एग्जाम्पल देते हैं, मैं कैसे भक्त बना, और जर भरत महाराज जो है रहुगण को उपदेश देते हुए अपना एग्जाम्पल देते हैं बाद में। ये तुमने नाम सुना होगा भरत का, वो भरत नहीं था, अपना एग्जाम्पल देते हैं जर भरत। तो ये एक पैटर्न है, एक शैली है भागवतम की, कि वही प्रभुपाद इसी तरह से इस चीज को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है वो अपनी बातों को और बहुत गंभीरता से बताना चाहता है, प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं 78 साल का हूं, मैं भी मरना नहीं चाहता, परंतु मुझे भी मरना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत के दर्शन की कुछ बातों को स्मरण करके ऋषि ने प्रभुपाद के विरोध में तर्क देने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि यद्यपि वृद्ध होना उसकी मजबूरी है, किंतु आत्मा के कायांतरण के कारण मृत्यु के पश्चात वह स्वतंत्र हो जाएगा, और जो भी हो अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी तो हैं। उन्होंने कहा, उसने क्या उत्तर दिया कि बूढ़ा होना तो मेरी मजबूरी है, मैं इसको रोक ही नहीं पाऊंगा, पर मैं मरने के बाद तो स्वतंत्र हो जाऊंगा ना बिल्कुल। ये अलग फिलॉसफी प्रभुपाद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से जो वार्तालाप थोड़ी लंबी है तो हम यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद लीलामृत की, नीताज गौर प्रमाण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? धन्यवाद। हरे कृष्ण।